कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ रही है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हसमुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत में फिलहाल कोई मामला नहीं है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सिक्वेंसिस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है।
सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है जो आज से प्रभावी हो गई है। 14 देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार भी ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि व्यवस्था को सुधारा जा रहा है।
एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें उससे निपटने के लिए। तो आज मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जहाँ तक बेड्स का सवाल है, पिछली बार जब कोरोना आया था तो लगभग 25,000 के करीब बेड्स हम लोगों ने स्केल अप किए थे उस टाइम। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं।
महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित देश के अन्य राज्यों में भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। राजस्थान के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहते हैं कि राज्य सरकार सचेत है।
नए वेरिएंट की ओमिक्रॉन नाम के जो साउथ अफ्रीका के देशों से पाया गया है, उसके कई फैलने की आहट को देखते हुए सभी तरह भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों सचेत है।
किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास जारी हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब एमएसपी पर किसानों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और किसानों को लेकर प्रतिबद्ध हैं।
मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलनकारी किसानों के रुख में नरमी आती दिख रही है। हालांकि आंदोलन कब समाप्त होगा, इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज कोई घोषणा कर सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर सरकार को फैसला करना चाहिए।
एक बड़ी बीमारी थी, कट गया, उसका रोग कट गया। अब जो दूसरे समाधान है उस पर भी सरकार बातचीत करे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है।
हालांकि सरकार ने एमएसपी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है, साथ ही इस कमेटी में किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नेताओं के नाम मांगे गए हैं। किसानों के आंदोलन को मिली सफलता के बाद अब उत्तराखंड में पुरोहितों और पुजारियों के आंदोलन को भी सफलता मिली है। राज्य सरकार ने 2 साल पहले तीर्थों का प्रबंधन संभालने के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। इसका पंडा, पुरोहित और पुजारी विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इस बोर्ड को रद्द करने की घोषणा की है।
देवस्थानम अधिनियम, उसको वापस लेने का निर्णय लिया है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं तीर्थ समाज हमारे पंडा समाज, हमारे हक हकूकधारी रावल, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जिन्होंने भी अब इस समय में जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो सभी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। हमने अधिनियम वापस ले लिया है, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे पहले की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जारी रहेंगी, और आगे निकट भविष्य में हम कोई भी ऐसा अगर इस प्रकार की और व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम सभी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे।
चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने 30 नवंबर तक का समय सरकार को दिया था और कहा था कि इस अवधि में अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून रैली का वे विरोध करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस ने खुशी जताई है। कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश गोदियाल इसे पुजारियों की जीत बताते हैं।
ये हमारे हक हकूकदारी और हमारे आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है। ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई, और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि ये एक्ट निश्चित रूप में हमारे प्रदेश के हित में नहीं है, हक हकूकधारियों के हित में नहीं है और पंडा पुरोहित समाज के हित में नहीं है। ये सरकार को इस बात का एहसास नहीं है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले 3-4 महीने में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी भाजपा सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।